आप सब तो कल्याणकारी बाप की संतान, कल्याण के लिए निमित्त बने हुए हैं ना? कल्याण करना है या क्या? खुद का कल्याण करना है या विश्व का कल्याण करना है? दोनों का कल्याण करना है, ये जवाब है। ये जवाब राइट नहीं है, मैं ये बता देती हूँ। अच्छा, और भी जवाब दो, देखो और क्या क्या जवाब आते हैं। ये भी जवाब राइट नहीं है जी, हो ही जाता है। अच्छा, और को क्या जवाब देते हो? हाँ? कहने का भाव, पूछने का भाव ये था कि अब आप लोग किस स्टेज तक पहुंचे हैं? अभी तक खुद का कल्याण करने का पुरुषार्थ है या आप सचमुच अपन को विश्व कल्याण के लिए निमित्त समझते हैं? तो आप लोगों के जवाब से मैंने क्या समझाऊंगा? हाँ, क्या था जवाब? दोनों का कल्याण, तो उसमें भी अजन स्व कल्याण का पुरुषार्थ है। अजन उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं कि हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे विश्व कल्याण के कार्य के लिए निमित्त बने हुए हैं। जब ये नशा चढ़ जाता है कि हम विश्व कल्याण के कार्य के लिए निमित्त बने हुए हैं, तब अपनी विचारधारा ही बदल जाती है। क्योंकि कार्य के लिए निमित्त है तो कार्य में मुझे क्या क्या करना है, किस प्रकार से सहयोगी बनना है, ऑटोमेटिकली उसमें जो अपने पुराने स्वभाव होंगे वो बदलना ही पड़ेगा ना, बदल ही जाएगा। ये सहज तरीका है स्वयं को परिवर्तन करने का। वैसे पुरुषार्थी रीति में आपका जवाब राइट है और आपने जिस लक्ष्य से दिया वो भी ठीक है, परंतु जब के इसके अंदर मेजॉरिटी ज्ञान में बहुत समय से चलने वाली है, तो उनके लिए उनको ये नशा होना जरूरी है। आप कहेंगे जबकि हम अपने लौकिक घर में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कोई कोई नौकरी कर रहे हैं, तो ये नशा कैसे चढ़ सकता है या हम इस नशे से कैसे बोल सकते? अब इसका उत्तर मैं दी हूं क्या? हाँ, ये कह सकते कि हम कैसे कह सकते, जबकि हम जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, जो ग्रस्त में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, धंधा करते हैं, उनको भी हम ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं कि तुम विश्व कल्याण के कार्य के लिए निमित्त बने हुए हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे धंधा करते हो, चाहे नौकरी करते हो, लेकिन जहां भी हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन वो करते हुए भी अपन को ऐसे समझो कि ये मेरा पार्ट है, ये समझो बाबा ने मुझे सेवा, ये लौकिक भी समझो मुझे सेवा मिली हुई है, वो सेवार्थ है, लेकिन अपने बुद्धि के अंदर ये रखो कि हम बाबा के बच्चे विश्व कल्याण के लिए निमित्त बने हुए हैं। जब हमारे अंदर ये नशा रहता है, ये भी एक नशा है, जब ये नशा रहता है, मानो हमारे अंदर बाप की स्मृति बनी हुई है। इस नशे से, इस स्मृति से हमें अपना पुरानापन अधिक खींचेगा नहीं। ये नशा अथवा ये स्मृति हमारे पुराने स्वभाव को परिवर्तन करती जाएंगी अंदर ही अंदर। वैसे भी देखो, स्थूल में देखो, जब आप लोग कोई नौकरी करते हैं, कोई भी काम पर है, चाहे धंधा करते हैं चाहे नौकरी करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, जैसी वहाँ की सिस्टम होगी, जैसा वहाँ का बना हुआ होगा ढांचा, जैसे वहाँ आपको बोलेंगे, उसी प्रमाण आप लोग करते रहेंगे ना। उसमें अपनी पसंदी नापसंदी का सवाल नहीं उठता है। परंतु फिर भी वो लौकिक दुनिया है, उसमें फिर भी अपना कुछ रह सकता है, लेकिन यहाँ तो पुरानी दुनिया नहीं, नई दुनिया है। नई दुनिया में हम चलने वाले, बल्कि नई दुनिया बनाने वाले। तो नई दुनिया बनाने वाले हैं, विश्व कल्याण के कार्य के लिए हम निमित्त बने हुए हैं। अंदर में अपने को यह स्मृति दिला करके इस नशे में रहने की कोशिश करो। चाहे पढ़ाई पढ़ते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे घर में रहते हो, चाहे कहां भी हो, लेकिन बाबा के बच्चे हैं। जब ये हम मानते हैं, ये एक अंदर सूक्ष्म निश्चय की बात है, जब हम ये मानते हैं हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा का कार्य सो बच्चों का कार्य, ये हमारे अंदर निश्चय की मात्रा कितनी बनी हुई है। ये जब हमें निश्चय बैठ जाता है, चाहे हम कुछ भी करते होंगे, चाहे पढ़ते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे घर में रहते हैं, सेंटर वाले तो भले अपन को ऐसे समझेंगे, लेकिन वे लोग भी अपन को सेवा पर समझते हैं। अर्थात उनकी बुद्धि में सदा ये रहेगा, जिससे भी बात करेंगे, जो भी संपर्क में आएंगे, पढ़ाई पढ़ने वाले उनके भी जो संपर्क में आएंगे, चाहे टीचर आते हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनके बुद्धि में रहेगा कि इनको बाप का परिचय कैसे दे। तो ये अपनी बुद्धि चलनी चाहिए, अपने बुद्धि के अंदर ये बात जरूर ध्यान पे रहनी चाहिए, जो भी मेरे को मिले, जिससे मैं मिलूं, उसको मैं ये ज्ञान का खजाना कहो अथवा बाप का परिचय दूं। कैसे दूं? जैसी व्यक्ति आज की टॉपिक थी ना, कैसे वार्ता को आरंभ करना है, जिज्ञासु से कैसे बोलना है, क्या क्या ध्यान में बातें रखनी है। लेकिन ये हमारी सुन ली, समझ में आ गई, परंतु जब तक मैंने उसको प्रैक्टिस में न लाया है, तब तक वो हमारी पक्की नहीं होगी। लेकिन प्रैक्टिस में हम तब ला सकते हैं जब हमारे पास ये लक्ष्य है, हम इस कर्तव्य के लिए निमित्त हैं। हम लोग इतने छोटे थे तो भी समझते थे कि हम इतने बड़े कार्य के लिए निमित्त हैं। बाबा ने हमको इतना बड़ा कार्य सौंपा है। पहले तो आते जाते थे ना, लेकिन आते जाते थे तो भी हमें ये नशा रहता था, चलो निमित्त जाते हैं घर में। ऐसा नशा हमें अंदर में चढ़ा रहता है। मूल बात तो पहली ये है कि हमें अंदर में निश्चय है, ये तो सब कह देंगे, लेकिन निश्चय के साथ नशा है तो ऐसे विचार चलते हैं, बुद्धि ऐसा काम करती है, और जब बुद्धि जो काम करती है वो हमारे कर्म में आते हैं, बोल में आती है, तब हमारी उसमें प्रगति होती है। ये जो हम अधिक प्रगति जल्दी से नहीं पा रहे हैं, उसका कारण कि हमारी बुद्धि उसमें लगी नहीं है। बुद्धि को हमने इस कार्य में लगाया नहीं। बाबा के बन चुके, बाबा आया हुआ है, ये हमें निश्चय हो चुका, चलो आगे चल करके हमको जीवन ऐसी बनानी है, ये भी कईयों ने समझो अपने दिल में निश्चय कर लिया, पर बनानी है, तब तक अपनी बुद्धि जहाँ है, जिस प्रकार है, उसी प्रकार से काम करती है, जिस कारण कई प्रकार की छोटी छोटी बातें अपने बुद्धि को सप्रश करती है, दिखाई पड़ती है, जिससे जरा मन के अंदर थोड़ा थोड़ा कभी कंफ्यूजन हो जाता है। और कारण मुख्य ये कि हमने अपने अंदर में निश्चय के साथ ये नशा नहीं रखा है कि हमें बाबा ने किस कार्य के लिए निमित्त बनाया है, बाप किस लिए आया है, हम बाप के बच्चे किस लिए बने हैं, हमें बाप का परिचय किस लिए मिला है, इस कार्य करने के लिए। तो उसमें जब कार्य करने के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, तो जो कार्य करना है उस लायक तो हम भी बनते ही जाएंगे। तो ये नशा पहले अंदर में चाहिए, वो ही नशा आपके कमियों को जल्दी खत्म करेगा, वो नशा आपके बुद्धि पर कोई छोटी मोटी बात का असर नहीं करेगा, क्योंकि नशा होने से खुशी रहती है, नशा होने से दृष्टि बड़ी ऊंची रहती है, नशा होने से मन के अंदर ऊंचे ख्यालात होने से छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं जाता है, नशा रहने से ये सब फायदे होते हैं, लाभ मिलते हैं, जिससे हम सहज आगे बढ़ते जाते हैं। ईश्वरी जीवन क्या है, ईश्वरी कर्तव्य की खुशी क्या है, ईश्वरी कर्तव्य से कितनी शक्ति मिलती है, ये हमें तब पता चल अनुभव होता जाता है। लेकिन उसके लिए पहले जितना हम निश्चय जरूरी समझते हैं, उतना निश्चय के साथ साथ ये नशा भी जरूरी। अब अपने अंदर इस नशे को जागृत करो, जितना निश्चय है उतना निश्चय के साथ नशा रहे, भले लक्ष्य होगा कि ये करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, परंतु उनके लिए अब बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, हम निमित्त है उसके लिए, चाहे हम कहां भी हैं। जब लक्ष्य है कि ये करेंगे, तो उसकी पहली क्वालिफिकेशन तो अभी हमें धारण करनी है, और अभी जब हमारे में वो पावर होंगी तो हमें सहज लगेगा इस जीवन को अपनाना। ये जो कहां कहां कभी कभी थोड़ी थोड़ी मुश्किल लगती है, थोड़ी थोड़ी बातें मन के अंदर आती हैं, उसका कारण इतना ही है कि हमें इस महान कर्तव्य का नशा नहीं। अच्छा, आज हम आपको केवल इतना बताने आए हैं, सहज बात, कि हमारी जो ये सिस्टम बनी हुई है, सेंटर्स जो हमारे बनते हैं, यहाँ भी कोई बहने सेंटर पर जाती है, कोई गीता पाठशालाओं में जाती है, या किनों के पास गीता पाठशालाएं हैं, तो ये हमारी सिस्टम सेंटर हम किसको कहते हैं, कोई सब सेंटर्स हैं और कोई गीता पाठशालाएं हैं। ये सिस्टम हमारी क्यों बनी हुई है और कैसे बनी हुई है, उसके अंदर पढ़ाई का कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का तो अंतर है। तो सेंटर और सब सेंटर लगभग बराबर हैं, केवल इतना है कि जो सेंटर हम तब उसको सर्टिफिकेट देते हैं, क्योंकि सेंटर को सर्टिफाइड किया जाता है, और आजकल तो आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट से भी हमारा संबंध है, आगे तो हमारी बातें गवर्नमेंट में कुछ नहीं जाती थी, क्योंकि वैसे ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड नहीं है, परंतु एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए गवर्नमेंट में हमारा जाता है। तो उसके लिए जो सेंटर्स हैं, वो समझो हमारा रजिस्टर नहीं है, परंतु जैसे कि गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज है, और रिकॉग्नाइज होने के कारण उसको हम अपना सारा हिसाब किताब देते हैं। तो सेंटर हम तब कहते हैं जब कुछ समय से, जब शुरू होता है तो उसको सेंटर नहीं बोला जाता है, भले आम रीति से कह देती है बहने, जो एक माह से भी शुरू होगा कहाँ भी, तो कहेंगी फलाना सेंटर है, फलानी जगह सेंटर है। कहने में उनका सेंटर शब्द आ जाता है, लेकिन वैसे बाकायदे कायदे के अनुसार हम उसको सेंटर नहीं कहते हैं। जब जहाँ समझो अजन शुरू करते हैं, कहाँ भी हम शुरू करते हैं, जब कोई गृहस्थी परिवार में, माना परिवार के बीच में जो अपना क्लास होता है वो तो गीता पाठशालाएं जैसे आप लोग जानते हो, लेकिन गीता पाठशालाएं ऐसी भी हैं जो अलग कमरा ले लेते हैं और वहां क्लास करते हैं, तो वो भी हम गीता पाठशाला मानते हैं। कहाँ ऐसी भी है जो अलग मकान लिया हुआ है और फिर वहां बहने भी रहती हैं, उसको भी हम गीता पाठशाला कहते हैं, भले वहां रोज क्लास होता है, कभी कहाँ सुबह को भी होता है, शाम को भी होता है, पर जहाँ प्रारंभ है, जहाँ कोई अधिक स्टूडेंट्स नहीं है, जबकि वो अधिक अपने पांव पर रहे और सारा उसमें सेवाएं बढ़ती जाए, उनका संपर्क एक विशाल रूप से होता जाए, वो नहीं है तो उसको हम गीता पाठशाला कहते हैं। और सेंटर का तो हर प्रकार से सेवा का क्षेत्र बना हुआ है, उसका विशाल रूप से, माना जो भी शहर के अंदर हैं, जो भी व्यक्तियां जिनों से भी संपर्क में आते हैं, उन्हों को परिचय देते हैं, या वहाँ किस भी टाइम पर कोई आता है उनको कोर्स देना, समझाना और क्लास कराना, ये सारी सिस्टम और उन्हों की दिनचर्या, बाकायदे सारे दिन की दिनचर्या अधिकतर मधुबन जैसी बनी हुई है, भले सेंटर के सेवाओं अनुसार, क्योंकि वहाँ कोर्स करने वाले आते हैं तो कोर्स करने के हिसाब से कोई किस टाइम आता, कोई किस टाइम आता है, इसलिए बहनों को उस टाइम के अनुसार उनको टाइम देना पड़ता है, वो अलग बात है, परंतु दिनचर्या का एक नियमित रूप अधिकतर मधुबन जैसा बना हुआ होता है, सवेरे उठना और जैसी दिनचर्या चलती है। गीता पाठशालाओं में थोड़ा दिनचर्या का भी फर्क रहता है, कहाँ तो ऐसे है जो क्लास के टाइम खोलते हैं और फिर बंद करके जाते हैं, कहाँ परिवार में है तो परिवार की सिस्टम से चलते हैं, चलो एक बार अपना क्लास कर लिया, नजदीक वाले आ जाते हैं और वो क्लास करते रहते हैं, इतनी संख्या बढ़ती नहीं है, जिनों को सहज होता है वो जरा आकर के वहाँ क्लास करते हैं, और कहाँ ऐसा है जो बहने रहती है और थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाने का प्रयत्न करती है, लेकिन इन तीन स्टेजेस तक तो वो गीता पाठशाला ही रहती है। फिर जब उसका थोड़ा विस्तृत रूप रहता है, स्टूडेंट्स आने लगते हैं और फिर हमारी भोग की सिस्टम, हमारी क्लास की सिस्टम, और क्लास में जो स्टूडेंट आते हैं वो बाकायदे नियमों पर चलते रहे। सेंटर का पहला मुख्य नियम ये है कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उन पर हमें पूरा ध्यान देना है, और जो हमारे ईश्वरी जीवन के नियम बने हुए हैं उन नियमों पर कोशिश करके स्टूडेंट्स को चलाना। जो भी स्टूडेंट्स है उनको नियमों को पूर्ण रूप से पालन करना है, ऐसी हमारी एक नियम बना हुआ है, माना रस्म है, और सेंटर्स पर आने वाले स्टूडेंट्स नियमों पर पूरे चले हुए होने चाहिए, ऐसी हमारी धारणा है। अधिकतर सेंटर के लिए स्टूडेंट्स की ये बातें देखी जाती है, जो आप लोगों को पता होगा, जब भी स्टूडेंट्स को यहाँ आते हैं मधुबन में तो फॉर्म भराया जाता है, जैसे आप लोगों से भी फॉर्म भराया गया है कि नियमों का कब से पालन है, कितने समय से पालन करते रहते हैं, तो मधुबन में आने वाले या जब बाबा से, अभी तो बाबा से मिलने वालों का 2 साल रखा है, 2 साल नियमों को पालन करते रहे, और वैसे मधुबन में आते हैं तो कम से कम 8 मास से पालन करता हुआ हो तभी आ सके। भले ही वो थोड़ी टीचर्स बहने उसमें थोड़ा मिक्स कर लेती है, परंतु नियम हमारा ये है, ये हमें पता है, थोड़ा बहुत मिक्स करती है, क्योंकि उनको थोड़ा तरस पड़ता है, चलो अभी 6 मास हो गया, अभी 4 मास हुआ है, फिर बरस के बाद प्रोग्राम बनेगा जाने का। अब कैसे जाएंगे? चलो थोड़ा लाभ ले ले, जाएगा तो पक्का हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट में ये देखा जाता है, अधिकतर मेजॉरिटी पक्के होने के बजाय वो वहां ही फिनिश हो जाती है। क्यों? कोनो को ये होता है, चलो मधुबन देखना है, एक बार देख के आए, तब तक नियमों पे थोड़ा बहुत चले और देख के आए, फिर जब उनकी दिल पूरी हो गई, वैसे भी इतने नियमों पर नहीं चल सकते थे, और फिर और भी ढीले हो जाते। क्योंकि ये भी एक सूक्ष्म ला है, कायदों को नहीं पालन किया तो शक्ति भी मिलनी चाहिए। शक्ति किसको मिलती है और शक्ति को धारण कौन कर सकता है? तो ये भी सूक्ष्म लास बने हुए हैं, जिन सूक्ष्म लास को जितना हम लाफुल बनते जाते हैं, जितनी हमारी धारणाएं बनती जाती हैं, जितनी हमारी बुद्धि सूक्ष्म और शुद्ध होती जाती है, उतना इन सूक्ष्म लास को भी हम समझ पाते हैं। नहीं तो ये सूक्ष्म मशीनरी कैसे काम करती है वो जरा जल्दी हमारे बुद्धि में नहीं आती। तो इसलिए कई ऐसे मिसाल देखे गए हैं जो और यहाँ आने के बाद ढीले हो जाते हैं, लेकिन सेंटर पर आने वाला विद्यार्थी अधिकतर नियमों पर पूरा होना चाहिए। आजकल थोड़ा संपर्क की सिस्टम जास्ती होने के कारण नियमों पर थोड़ा कम ध्यान रखा जाता है, लेकिन बाबा के दिनों में तो नियमों पर बड़ा पक्का ध्यान रखा जाता था। पहले आने से बाबा ये पूछेगा कि नियमों पर चलते हैं, और अगर थोड़ी भी उसकी गड़बड़ होंगी तो कोई ना कोई बात से उसका पता चल जाएगा, क्योंकि बाबा की वैसे भी परख शक्ति तेजी थी और बातचीत से भी पता चल जाता है। तो कोई भी अगर टीचर थोड़ा बहुत भी ऐसे कर देती तो पता चल जाता था, इसलिए टीचर पहले से बाबा को बता देती थी, बाबा ये थोड़ा इस बात में कमजोर है, ताकि उसकी पीछे कमजोरी हाथ में ना आवे। तो सेंटर के अंदर स्टूडेंट्स पर पूरा ध्यान दिया जाता है, और उसको इन्हीं हर बात में, क्योंकि उसको पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है, उनकी रेगुलरिटी भी चाहिए, और साथ साथ उसके लिए धारणा भी कंपलसरी है, और फिर जो सेंटर चलता है उनकी पूरी जवाबदारी स्टूडेंट्स पर ही होती है। जब उनका ये सारा स्टूडेंट्स ठीक रीति से सेंटर को चला पाते हैं, तब उनको फिर वो सर्टिफिकेट, और वो भी जब 2-3 बरस ठीक तरह से चलता है, तब उनको वो सेंटर का सर्टिफिकेट मिलता है। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि सेंटर्स का कनेक्शन जोन के साथ है, सब सेंटर का कनेक्शन मुख्य सेंटर के साथ, सेंटर्स का कनेक्शन फिर जोन के साथ है। गीता पाठशाला तो जो जो गीता सेंटर गीता पाठशाला खोलता है, या तो सब सेंटर्स भी कहीं गीता पाठशालाएं खोलते हैं, गीता पाठशालाएं भी है तो क्लासेस भी है, वो तो इसका विस्तार तो बहुत है, क्लासेस का भी विस्तार बहुत है और गीता पाठशालाओं का भी विस्तार बहुत है। आजकल तो बहुत विस्तार है, क्योंकि गृहस्थी परिवार में रहने वाले, अगर समझो एक शहर से दूसरे शहर में बदली हो जाते हैं और वहाँ कोई सेंटर नहीं है, तो उनका नियम है कि हमें रोज मुरली पढ़नी है, तो कहाँ मुरली पढ़ेंगे? उसी निमित्त वो अपने ही घर में गीता पाठशाला चालू कर देते हैं, तो कम से कम वहाँ मुरली पढ़े, और जब खुद पढ़ते हैं या परिवार ज्ञान में पढ़ते हैं, तो उनकी दिल होती है हम थोड़ा थोड़ा औरों को ज्ञान सुनाएं, ऐसे थोड़े थोड़े हो करके माना छोटा सा क्लास बन जाए। इसी प्रकार गीता पाठशालाएं तो इतनी है जो आजकल गिनती से ही बाहर है, हर सेंटर से पूछो तो हर एक अपनी अपनी बहुत गीता पाठशालाएं बताते हैं। अभी मुख्य बहनों को बुलाया गया था ना, सेंटर इंचार्ज बहनों को, तो दादी ने सबको लिखा था कि हर एक अपना वो सारी लिस्ट लेके आवे, कि सेंटर को हर सेंटर ऐसे नहीं जोन की सारी लिस्ट आवे, पर हर सेंटर अपने सेवाओं की लिस्ट ले आवे। तो सेंटर को भी अपने सब सेंटर्स कितने हैं, सेंटर की अपनी सेवाएं गीता पाठशालाएं या क्लासेस कितने हैं, अथवा जो सब सेंटर है उनकी भी कुछ गीता पाठशालाएं वगैरह हैं। तो हर एक मतलब हर सेंटर अपनी अपनी सेवाओं की माना क्लासेस गीता पाठशालाएं सब सेंटर वो अपनी अपनी लिस्ट बना के लिए। तो देखा गया गीता पाठशालाओं की तो लिस्ट इतनी है जो गिनती करते ही रहो। सेंटर्स तो खैर गिनती वाले ही है क्योंकि हमें देना पड़ता है अकाउंट और गवर्नमेंट में पूरी लिस्ट है, इसलिए अभी सब सेंटर्स को भी हम अभी तक गवर्नमेंट में नहीं देते हैं। तो सेंटर, सब सेंटर, गीता पाठशाला और क्लासेस, इस चार प्रकार से हमारी ये सेवाएं चलती रहती है। सेंटर और सब सेंटर तो मानो पूरा टाइम खुला रहता है, जिसके लिए बाबा का हमेशा कहना है कोई भी कभी भी आवे तो उसको लौटाना नहीं है। यू तो समय के अनुसार बीच बीच में हम लोगों ने ये डायरेक्शंस निकाले थे कि सवेरे 4 बजे कोई नहीं आ सकता है सेंटर पर, अपने विद्यार्थी भी 4 बजे आकर के योग नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेंटर पर केवल 2 बहनें होती है अधिकतर। जैसे सेवाएं बढ़ती हैं, जैसे वो अधिक सब सेंटर्स अथवा गीता पाठशालाएं खोलते हैं तो बहने उधर बढ़ती जाती है, माना और जगह और सेंटर्स पर चली जाती है। तो अधिकतर देखा गया है सेंटर्स पर 2 बहनें कहां 3 बहनें हैं, और कोई कोई मुख्य सेंटर है जहां आना जाना बहुत है, मतलब जोन के हिसाब से, तो वहां थोड़ी बहुत जास्ती बहनें होती है क्योंकि आना जाना के होने के कारण काम भी बहुत रहता है, कोई आता जाता है तो खातरी तो करनी पड़ती है ना, परिवार है अपना, तो परिवार के नाते से भी हमारे पास ये काम भी, क्योंकि जैसे अपने घर में काम होता है तो परिवार के नाते कोई भी आएगा तो उसको खिलाना पिलाना या जैसा टाइम होगा वैसे उसको ऑफर करते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा काम बढ़ जाता है तो बहनें जास्ती होती है, नहीं तो अधिकतर तो केवल 2 बहनें ही होती है। तो जब 2 बहनें है और सवेरे का टाइम है तो फिर उसके लिए मना है आने की। और इस हिसाब से दिन के टाइम भी जहाँ 1 बहन रहती है या केवल 2 बहनें हैं, वहां पर जिज्ञासुओं को दिन के 1 बजे या 2 बजे के बाद 4-4:30 बजे तक आने की मना है, क्योंकि वो वैसे भी रेस्ट का टाइम है, उन्हों के लिए दुनिया में रेस्ट का टाइम नहीं है क्योंकि वो लोग तो काम पर जाते हैं, काम पर रहते हैं, लेकिन वो बीच का टाइम होता है। तो बहनों के रेस्ट का टाइम होने के कारण समझो 2 बहनें हैं, 1 बहन रेस्ट में है और 1 बैठी है, कोई भी आएगा तो अकेली बहन रहेंगी। तो इसलिए समय के अनुसार और सेंटर के अनुसार फिर कहाँ कहाँ ये नियम दिया गया है कि ऐसे नहीं आ सकते। बाकी जो जनरल टाइम है जिस समय मेजॉरिटी आना जाना लगा ही रहता है, उस समय तो कोई भी आवे उसके लिए तो फिर कभी भी कोई जिज्ञासु आवे तो उसको ना नहीं करनी, अभी टाइम नहीं है, अभी हम नहीं दे सकती है, अभी बहन जी ठीक नहीं है या अभी बहन जी आराम में है, ऐसे नहीं कह सकते है। वो तो जब भी सेवा पर जो आता है अपनी सेवाएं देनी ही है, ये हम लोगों को अपने बुद्धि में रहे और ध्यान रहे। इस प्रकार जब हम सेवाएं करते हैं तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें ये हम कोई भी किस भी समय आवे और हम उसको अटेन करते हैं, इसका मतलब हमें अंदर में सेवा के लिए बड़ी रुचि है। जो किस भी टाइम कोई आता है हम रुचि से खुशी से जाकर के उसको अटेन करते हैं। तो एक तो हमारी रुचि और दूसरा फिर हमें उसकी खुशी है, तो हमारे लिए भी हमारी जीवन के लिए भी वो एक खुशी हो जाती है और इसमें हमें और भी मदद मिल जाती है जब हम उसको बैठ करके समझाएंगे, खुशी से समझाएंगे और उसे रुचि से बात करेंगे तो उसकी रिजल्ट भी निकलती है जो वो आगे चल पाता है। परंतु अगर हम बड़े क्या बोले, क्या शब्द इसको बोले, हा? दिन के टाइम कोई आ जाता है या ऐसे टाइम आता है हम जरा थक जाते हैं और फिर जाकर के समझाते हैं, बहन जी कहती है जाओ जाके समझाओ, तो क्या कहेंगे, किस मूड से जाएंगे, फिर समझाते समझाते मूड बदल जाती है, लेकिन पहले जरा वो होता है अभी अजना के बैठी है और अभी फिर जाएंगी, पर कर ही क्या सकते हैं, बाबा ने भेजा है तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा अपने में सेवा का उमंग रखो, सेवाएं तो और आगे बढ़नी है। देखो अभी मधुबन में जो हमेशा, वैसे मधुबन में सर्दी के दिनों में सीजन नहीं होती थी, पहले मानसून में सीजन नहीं होती थी, और अभी देखो सर्दी में तो कंपलसरी है, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा आते ही सर्दी के दिनों में है। तो जब से अव्यक्त बाप दादा का सर्दी के दिनों का प्रोग्राम है, तब से समझो सर्दी के दिनों में तो सीजन है ही है, कितनी भी ठंड हो आप लोगों को भी आना ही पड़ता है, और मानसून के दिनों में भी सीजन चलती रहती है। तो मधुबन में भी अब कोई ऐसा समय नहीं जो सीजन ना हो, और सीजन भी मैं नहीं जो सीजन ना हो, और सीजन भी संख्या में भी जास्ती, सीजन भी कंटिन्यू चलती है और संख्या में भी अधिक चलती रहती है। जैसे देखो अभी हम लोगों ने समझाता कुमारियां कितनी आएंगी, दादी ने तो जब दादी को बोला गया दादी ये डायरेक्शन हम खुला कैसे दें, थोड़े सेक्शन में दें, क्योंकि फिर इतनी आ जाएंगी तो फिर बहुत हो जाएंगी, दादी ने कहा इतनी आएंगी नहीं। क्यों नहीं आएंगी, कंडीशन था ना, माना दादी का सोचना बरोबर था, और अभी भी हम छांट करें तो बात बरोबर वो ही आके होती है। कंडीशन था कि जो यहाँ से ट्रेनिंग ले उनको यहाँ से ही सीधा सेंटर पर जाना है, जहां भी हम सेंटर पर भेजें। अब इस कंडीशन वाले अभी भी आप लोगों से छांट करें तो कितनी निकलेंगी, परंतु बहने समझती है नहीं चलो ये भी जाए, थोड़ा सुन लेंगी, बल भर जाएगा, उमंग आ जाएगा। अभी उमंग आ जाएगा, उमंग को बढ़ाओ और उमंग वालों को आगे बढ़ाओ, फर्क रहेगा, होगा ना फर्क। उमंग को लाओ, उनमें शक्ति भरो तो उमंग आवे, और जिनों में उमंग है उनको आगे बढ़ाओ तो फर्क तो पड़ेगा ना, तो फिर मिक्स हो जाता है, फिर हम लोगों को भी मिक्स करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये बढ़ता ही जाता है, जैसे अभी भी हमारे सामने है संख्या कितनी सोची आ कितनी गई और मिक्स है। ऐसे मधुबन की सीजन में भी हम नियम तो लिखते हैं परंतु थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेती है टीचर्स, लेकिन आप लोग आगे चल करके जब टीचर की जगह पर आओ, अभी से ही आप अपने को नियमों में हर प्रकार से कायदे से मर्यादाओं में चलाते रहेंगे तो आगे चल करके आपकी सेवाएं भी ऐसी ही चलती रहेंगी, क्योंकि उसमें सफलता अधिक है। भले संख्या कम है लेकिन वो संख्या विशेषताओं वाली होंगी, माना नियम को धारण करने वाली धारणाओं वाली होंगी। तो जब धारणाओं वाली संख्या है तो उस संगठन की शक्ति और उस संगठन की शक्ति में अंतर तो रहेगा। तो हमें लक्ष्य क्या रखना है कि हमें ऐसी सेवा करनी है जिसमें, जैसे आप लोगों ने कहा ना, पहले स्वयं और फिर सर्व की। तो पहले स्वयं को हम हर प्रकार के नियमों और मर्यादाओं में चलाएं, और ये हमारे ईश्वरी जीवन के लिए मर्यादाएं अथवा नियम, नियम और मर्यादाओं में अंतर है या एक ही है? हाँ अंतर है, कैसे? नियम चार बताए हैं और मर्यादाएं अनेक हैं, हाँ? नियम भी बहुत हैं, ये तो चार तो समझो ये मुख्य योग के लिए बताए हैं, माना जीवन का पहला स्टेप है चार नियम, जो अन्न की शुद्धि, ब्रह्मचर्य का पालन, संघ का रंग और दैवी गुणों की धारणा, ये बोलती हो ना चार, ये तो जीवन का पहला फाउंडेशन है। आगे चल के ये भी तो हमारे नियम है, सवेरे उठना, रोज क्लास करना, ये भी हमारे नियम है, और ये राइट है कि नियम और मर्यादाओं में अंतर है, और मैं समझती हूँ बीच में जब टीचर्स बहनों को ये दिए गए थे तो शायद आप लोगों को सुनाए है या नहीं, वो मुझे पता नहीं है। क्लासेस में जो उनको अलग नियम अलग लिख करके दिए गए थे और मर्यादाएं अलग लिख करके दी गई थी, दोनों को अलग अलग करके। भले कोई कोई बातें एक दो से मिलती हैं, परंतु उसमें थोड़ा अंतर है। वो मर्यादाएं ये संगठन के रूप में, परिवार के रूप में चलती हैं, और नियम जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई है, उस रीति से हमारे जीवन के नियम बनते हैं। तो इन बातों को भी जितना हम अपने जीवन में धारण करते जाते हैं, वो आप लोगों को भी मर्यादाएं सब बताई जाएंगी, क्योंकि लक्ष्य तो सभी का है ना कि हमें ब्रह्मा कुमारी बन करके और बाबा की सेवा में लगना है ना, लक्ष्य सभी का। हाँ, कुछ तो सेंटर पर रहती भी है, उनको पता है, लेकिन थोड़ा जो जीवन से थोड़ा समझते हम स्वतंत्र रहें, स्वतंत्रता का भाव यही आता है कि हम मर्यादाओं के बंधन में न रहें। मर्यादाओं का बंधन लगता है, लेकिन आप लोग सोचो जीवन बंधन के सिवाय होती नहीं है, परिवार के सिवाय जीवन होती है क्या? जन्म ही होता है जब परिवार में है, माँ बाप से जन्म हुआ तो माँ बाप के साथ रहते है ना, तो जब माँ बाप के साथ है, परिवार में है, परिवार है तो मर्यादाएं है ही है। हम मर्यादाओं से स्वतंत्र होना चाहें, अर्थात क्या हुआ, मतलब क्या होगा इसका, अर्थात हम संगठन से अर्थात परिवार से अलग रहे। आजकल दुनिया में भी ऐसे है ना, परिवार में इकट्ठा कोई रहना नहीं चाहता। बच्चा बड़ा हुआ, शादी की, अपना अलग घर बनाया, अलग परिवार, अपना छोटा सा परिवार, जास्ती चाहिए नहीं। माँ बाप से भी अलग हो जाता है, क्योंकि फिर माँ बाप के मर्यादाओं को पालन करना पड़ेगा ना, उनकी आज्ञाओं को पालन करना पड़े ना, तो उससे स्वतंत्र होना चाहता है। तो उसको हम आज कलयुग बोलते हैं। अभी के समय को क्या कहा जाता है, कलयुग कहा जाता है ना, कलयुग कहा जाता है ना, तमो प्रधान सम, आजकल के जमाने को क्या कहा जाता है? तो हमने पहले क्या बोला, क्या बोला जो आपने संगम युग का जवाब दिया? तो आजकल के जमाने को कलयुग कहा जाता है, क्योंकि ये जमाने की रवश है। अगर जमाने के अनुसार हम भी ये चाहते हैं तो हम संगम युगी ईश्वरी परिवार के माने जाएंगे, बन सकेंगे। इसलिए हमें अपने बुद्धि को ये ठिकाना देना है, हम ईश्वरी परिवार के। ईश्वर ने जब रचना रची है तो रचना बड़े नियमों से रची है, रचना के अंदर बड़ी सभ्यता बनी हुई है, और सभ्यता रहती ही है जब उनके अंदर मर्यादाएं। अगर मर्यादाएं नहीं है तो सभ्यतावान नहीं बन सकती। सभ्यता का भाव ये आता है, जबकि एक दो को हम सुने और एक दो की माने। मोटे रूप में अगर कहा जाए, पहली सभ्यता एक दो का सुने और एक दो को माने। अगर ये हमारे में से, ये है परिवार की सभ्यता। लौकिक में देखो, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाएगा, माँ बाप का उसको सुनना ही पड़ता है ना। आज्ञाकारी बच्चा सदा माँ बाप की आज्ञा का पालन करेगा। चाहे आज के जमाने में बच्चा कितना भी पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, बैरिस्टर हो, कुछ भी हो, माँ बाप उनके लिए बड़े हैं, अनुभवी हैं, दुनिया के परिस्थितियों को जानते हैं, हर मनुष्य माना जो भी परिवार के सदस्य हैं, किस प्रकार के हैं, कैसे चलते हैं, कैसे चलना चाहिए, उसके अनुभवी हैं। अनुभवी के नाते उन्हों का कहना, उन्हों का बताना, उन्हों का समझाना, वो मानने में ही अपना कल्याण होता है। ये एक कॉमन बात है, जिसको कहा जाए ना कॉमन सेंस की बात है। तो ये अगर हमारे जीवन में बन जाता है ऐसी ही रीति से, जब हम सेंटर पर रहते हैं तो सेंटर में भी हमें कुछ मर्यादाएं हमेशा के लिए पालन करनी पड़ती है। भले हम पढ़ाई में आगे हैं, बहने पहले वाली बहने इतनी पढ़ाई नहीं की हुई है, लेकिन ज्ञान का अनुभव, जबकि बहुत समय से ज्ञान में है, तो ज्ञान का अनुभव उनों के पास है। ईश्वरी परिवार का अनुभव उनों के पास है। उस अनुभव के आधार पर जब हमें बोलती हैं, तो उस बात को हमें समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। हम जल्दी से ये न कहें कि हमें ये पसंद नहीं, हम अपने बुद्धि को उस रीति रखे ही नहीं कि हमारी पसंदी कैसी है या क्या है। हम अपनी पसंदी ही ऐसी बनाएं जो ईश्वरी परिवार के मर्यादाओं के अनुकूल। जब हम अपनी पसंदी ईश्वरी मर्यादाओं के अनुकूल बनाते हैं, तो उसमें हम आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते जाने से हम अपने जीवन का जो लक्ष्य रखते हैं, उसमें हमें सफलता मिलती है। सफलता मिलने के कारण हम खुशी में रहते हैं और अपने को आगे बढ़ाते जाते हैं। परंतु अगर हम लक्ष्य जो रखते हैं और उसमें जो मर्यादाएं हमारी बनी हुई है, हम उसके अनुकूल अपने बुद्धि को नहीं रखते हैं, जमाने के अनुसार स्वतंत्र विचारों के होते हैं, तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। एक तरफ से बुद्धि मानती है ईश्वरी जीवन अच्छी है, एक तरफ से बुद्धि कहती है नहीं, बाबा की सेवा मुझे समर्पित भाव से करनी है, लेकिन दूसरे तरफ इसको हम कहते हैं जमाने की गर्दश, जमाने की हवा। वो जब हमारे में आती है, उसी प्रकार से हम अपन को चलाते हैं, तो हमारे अंदर संघर्ष होता है, क्योंकि उसमें मानना न मानना दोनों बातें आ जाती हैं। और नहीं तो हमारे पास मान्यता ही चलती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है कि ईश्वरी परिवार के मर्यादाओं के अनुकूल हमें अपनी जीवन चलानी। जब इस प्रकार का लक्ष्य हम रखते हैं, तो हम सेंटर पर रह करके अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। इस रीति जब हम सेंटर पर चलते हैं और सेंटर की सिस्टम में अपन को एडजस्ट करते हैं, तो हम अपने जीवन में भी सुखी, हमें सेवा में भी सफलता मिलती है, और हम अपने स्थिति की भी उन्नति अनुभव करते जाते हैं। ऐसे अगर हम अपनी उन्नति करते चलेंगे, तो हम अपने जीवन से सदा खुश रहेंगे, और खुश होने से और भी हमें देख करके खुश होंगे। हम जीवन में खुश हैं, ये खुशी ही हमारी सेवा कर देती है। आज मनुष्य क्या चाहता है? खुशी ही चाहता है। तो इस प्रकार हमें अपने सेंटर के जीवन को अथवा सेंटर के सिस्टम को भी अच्छी रीत समझ करके और उसी प्रकार अपने जीवन की धाराओं को निश्चित करना है, और उस प्रकार हमें अपने जीवन में चलना है।